जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताळम नमो सिद्धाळम नमो आयर्याळम नमो वज्झायाळम नमो लोये सर्वसाहूणम त्वयि सति परमात्मन् माद्रशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेहम् सुगत मगधरम् वा वागधीशम् शिवम् वा जित भवमभिवन्दे भासुरम् श्रीजिनम् वा रमियोणजिनम् वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहावम् वोच्छामि नियमसारम् केवलि सुद केवली भणिदम्। नियमसार परमागम शास्त्र यहाँ विराजमान है। पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन ने पांच श्लोक 221, 22, 23, 24 जिन पर जो टीकाकार मुनिराज द्वारा लिखे गए हैं उन पर अपन ने गुरुदेव श्री के उद्गार सुने हैं, थोड़ी चर्चा अपन उसकी करेंगे, फिर जिनेन्द्र भक्ति के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। शायद मैंने पहले ही दिन आपको कहा था लेकिन किसी ने मुझे रिमाइंड नहीं किया। मैं यही देखना चाहता था कि हम जो प्रॉमिस करते हैं उसको आप लोग याद रखते हैं कि नहीं। मैंने कहा था समय सार, प्रवचन सार और नियम सार, ये तीनों ग्रंथों की विषय वस्तु में क्या फर्क है उसका तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा संक्षेप में उसकी चर्चा अपन अभी पहले करते हैं। बहुत मार्मिक बात है तीनों को एक साथ रखना है। देखिए पंच परमागमों की जो रचना कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा हुई उसमें चार परमागमों का तो एक विशेष उद्देश्य है, यूं कह सकते हैं कि वो बहुजन हिताय पब्लिक के फेवर में है, आम जनता मुमुक्षु के आत्मार्थी के। और ये नियम सार है, ये स्वांतः सुखाय है, स्वांतः सुखाय और बहुजन हिताय, ये दो शब्द शायद आपने लौकिक जगत में सुने हो, इसी टाइप का कुछ गुजराती में भी होता होगा मुझे पता नहीं। स्वांतः सुखाय इटले पोताना माटे, बहुजन हिताय इटले बधा माटे। घर में खुद भोजन करना वो स्वांतः सुखाय है और अपनी तरफ से स्वामी वात्सल्य का जमन कराना वो बहुजन हिताय है। गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपने को दोनों बिंदुओं को छूता हुआ दिखेगा। खुद रस पीते आहा की एक बढ़िया घटना है, ऐसी घटना के प्रसंग छोटा सा बहुत मामूली प्रसंग है। ये उस समय की बात है जब परमागम मंदिर नहीं बना था और बनने की कोई प्लानिंग भी नहीं थी, 68 की बात है, 68-69 की। ये योजना तो 69 में बनी, रत्न चिंतामणि महोत्सव के नाम से 80वीं जयंती गुरुदेव श्री की यहाँ मुंबई में ही हुई थी, तब मुंबई के मुमुक्षुओं द्वारा ये संकल्प किया गया कि अपन सोनगढ़ में एक परमागम मंदिर बनाए। तो अभी जहाँ परमागम मंदिर है वहाँ पर पहले टीन सेट के नीचे 5-7 छोटे छोटे रूम थे, उसमें ऑफिस भी था, बेचाण विभाग भी था। मुझे तो जब सोनगढ़ जाता हूँ तो वो सीन घूम जाता है आंखों में। तो जब दैनिक स्वाध्याय जो है डेली का वो तो स्वाध्याय मंदिर में होता था और उस समय का जो गुरुदेव का रस कस और जो वाणी और जो सब टेस्ट है वो निराला ही था स्वाध्याय मंदिर के प्रवचनों का, वो डेली के श्रोता और डेली रूटीन का ही कार्यक्रम था। लेकिन जब 20-20 दिन के शिविर लगते थे और 500-700 लोग वहां पहुंचते थे तब गुरुदेव प्रवचन मंडप में व्याख्यान करते थे। तो एक बार की बात है कि गुरुदेव श्री का व्याख्यान हो चुका और गुरुदेव श्री पधार गए और खाली हो गया हॉल। तो एक बच्चा, उसको मैं जानता हूँ, वो जबलपुर का है, तो वो रामजी भाई उस समय एक ऐसी जाड़ी गद्दी लेकर के बैठते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी बहुत दिनों तक, तो वो नीचे ही बैठे। मुझे तो आश्चर्य होता है उनने तो 90 वर्ष की उम्र के बाद में कुर्सी की जरूरत पड़ी। हम इतने अभागे हैं कि अभी अपन 69 के नहीं हुए हैं और कुर्सी लगने लगी। मेरी पुण्यहीनता है वास्तव में ये है। धन्य है वो जीव जिन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जाड़ी स्पंज की गद्दी लेके बैठते थे। एक वो बच्चा हमारे जबलपुर का, वो 4-5 साल की उम्र का था उस समय, उसकी बहन बाल ब्रह्मचारी सोनगढ़ में ही रहती थी, अभी जयपुर रहती, तो वो यूं बैठ गया गद्दी पर जाके और फिर आराम से बोलता है, भगवान आत्मा आहा हा हा। और ये 5 मिनट तक ये किसी ने उसको देखा नहीं और उसको पता ही नहीं था कोई मुझे देख रहा है, बस यही बोलता था भगवान आत्मा आहा। मैंने सोचा इतने से बच्चे को अभी नमोकार मंत्र भी ठीक से नहीं आता है, गुरुदेव के व्याख्यान में इतना सुनने मिल गया कि भगवान आत्मा और आहा इतना बोलते हैं गुरुदेव। कहने का आशय ये है कि गुरुदेव कभी पब्लिक के लिए नहीं बोले, बोले तो पब्लिक की करुणा करके कि लोगों को समझे, पर उसकी अपेक्षा नहीं रखी निष्प्रह हो करके कि लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। आज कहा था ना, समाज में समतोल रहेगा कि नहीं, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, इसकी दरकार संतों ने नहीं की, गुरुदेव ने भी नहीं की। उन्हें ये ग्रंथ का एक एक पंक्ति पंक्ति का दोहन करना है, उसका रस निकालना है, वो रस खुद पीना है और फिर भव्य जीवों के भाग्य से वाणी में जो छलक पड़े वो पब्लिक को देना है। यानी पूरी तरह से स्वांत सुखाए वाली शैली वो पूज्य गुरुदेव श्री की थी। ये अपन सबको, खासकर हम लोगों को आदर्श बनाने लायक है, क्योंकि जरा ही पब्लिक इधर की उधर हुई, कोई नया चेहरा आया तो हमारे प्रवचन की टोन बदल जाएगी, हमारे पॉइंट बदल जाएंगे, कोई किसी ने कुछ हिंट किया पहले तो हम उधर चले जाएंगे। अपनी राह पर डटे नहीं रहते, ये वीकनेस है। लेकिन गुरुदेव की पुण्य और पवित्रता उतनी थी जबरदस्त। खैर तो ये नियम सार ग्रंथ की रचना, कभी कभी गुरुदेव चुटकी भी लेते थे उसी प्रवचन सार प्रवचन मंडप में। एक बार नियम सार का स्वाध्याय चलता था तो एक तो कमेंट्स गुरुदेव ने किया, आ तो समय सार करता पण ऊंचा चढ़ी गयो छे, ऐसा उत्साह व्यक्त किया। फिर उन्होंने देखा होगा पीछे कोई आदमी को ऐसा झूला आ गया, यहाँ भी बहुत से लोगों को आ जाता है, ठंडी ठंडी हवा है, एसी है, इतने सुंदर व्यवस्था है, तो वो नेचुरल है, थोड़ा नाश्ता ज्यादा हो गया तो वो तो आए गई। तो गुरुदेव ने किसी को देख लिया, झूला खाते हुए देख लिया, तो उन्होंने क्या बोला मालूम, आ बात तो एवी छे के सामलताज झूला आवी जाए एवी बाज। तो मुझे समझ में आया कि गुरुदेव की नजर भी श्रोताओं पर रहती है और वो कौन पहले गुणस्थान में है, कौन ऊंचे के गुणस्थान में चला गया, इसका भी बराबर ख्याल रखते हैं। कभी कभी विकल्प प्राय टोकते नहीं है पब्लिक को ज्यादा, लेकिन कभी कभी विकल्प आ जाए तो वो कमेंट्स भी कर देते। इस समय नियम सार की महिमा गुरुदेव श्री बारंबार इसलिए करते हैं कि चार परमागमों के बाद में एक प्रश्न दिमाग में खुद खड़ा होता है कि कुंद कुंदाचार्य जब सीमंदर प्रभु के दर्शन करके यहाँ पधारे भरत में, तो पहले कौन सा ग्रंथ बनाया। मैंने बोला था मैं पूछता हूँ तो जवाब लेने के लिए नहीं पूछता हूँ, आप सोचो उसके लिए, फिर भी आते हैं जवाब तो अच्छा लगता है। तो पंडित हिम्मत भाई जी ने जो प्रवचन सार ग्रंथ का उपोद्घात लिखा है, सोनगढ़ से जो प्रकाशित हुआ है, उसमें पंडित जी साहब ने ये कल्पना की है, उनने भी कोई ऐतिहासिक खोज हो, वो कोई प्रमाण मिला हो, कोई शिलालेख मिला हो, ऐसा नहीं है, पर उनने अनुमान लगाया कि जरूर उनने आते ही साथ सबसे पहले प्रवचन सार लिखा होगा। ये साइकोलॉजी है। देखो गुरुदेव के नैरोबी से आने के बाद के प्रवचन में, हर प्रवचन में नैरोबी आएगी। 15 तो अबजपति छे, 1,00,000 करोड़पति छे, कल ही आया था, 60,00,000 रुपया भेगा करया छे, 22,00,000 का मंदिर थवाना छे, 60,00,000 रुपया वीजा भेगा करया छे, 15 करोड़ अबजपति, छता दुखी छे बेचारा, दुखी छे बेचारा, ऐसा। तो वो नैरोबी आए बिना नहीं रहेगी। अभी गुरुदेव जैसे निष्प्रह व्यक्ति को, जिसको समाज से, समाज को देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी अबजपतियों को और नैरोबी को याद करते हैं। तो हो सकता है अकेली संजनन कसाई का उदय जिनको है, जिनको कुंद कुंदाचार्य देव को, तो वो आए तो जो किसका सत्संग करके आए थे, अनंत चतुष्टय वंत समूह शरण में विराजमान है, केवल ज्ञान स्वरूप परिणमित ऐसे अरंत परमात्मा सीमंदर नाथ उनके चरणों में 8 दिन रहे होंगे। ये कल्पना भी बड़ी रोमांचक है भाई साहब। इसकी भी एक कहानी है छोटी सी। आपके पोन्नूर में जब बेदी शिलान्यास, वो बेदी प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय मेरे को 4-6 महीने पहले से अनंत भाई ने खास फोर्स करके और हर महीने रिमाइंड करके एक इंद्र सभा स्पेशल आपको लिखनी है उस प्रसंग के अनुसार। मैंने बड़ी मेहनत करके लिखी, लेकिन पता नहीं क्या वो शेड्यूल क्या कैसे चेंज हो गया, तो वो हुई नहीं। अब मेरी वो खो भी गई, नहीं तो मैं अभी उसको कहीं पब्लिश भी करा सकता था। उसमें ये क्वेश्चन आंसर थे, एक इंद्राणी पूछती है कि कुंद कुंदाचार्य जब विदेह क्षेत्र चले गए तो वापस क्यों आए। तो ऐसा प्रश्न डाला कि जब वो विदेह क्षेत्र चले गए, देखो अपने बच्चे अमेरिका चले जाते हैं। तो पहले तो सोचते हैं हम तो खाली पढ़ने के लिए जा रहे, फिर बाद में सोचते कि यार पढ़े 5 साल पढ़े और फिर यहाँ अच्छे डॉलरों में तनख्वाह मिल रही है तो 2-5 साल कमा ले रहे, फिर 1-2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे, फिर वापस इंडिया आ जाएंगे। तो लेकिन वो उसका कभी अंत आता नहीं है और वो बच्चा वापस आता नहीं। ये बहुत बड़ी खतरनाक पोजिशन है। जब मैं अमेरिका जाता था तो इसको मालूम है भव्य को, तो मैं वहां के बच्चों से कहता था कि भैया पढ़ने के लिए आए हो तो ठीक है, बसना नहीं यहाँ पे, क्योंकि इंद्री सुख की तो प्रचुरता है लेकिन वो दुख की ज्वाला है, उसमें शांति नहीं है, और आपके भविष्य की अनंत पीढ़ियों को, समझ में आया ना, बच्चों को उनके बच्चों को वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी ये तत्व ज्ञान से, उसको आप तत्व ज्ञान दे नहीं सकोगे। इसलिए मैं उन लोगों को बहुत पुरुषार्थी समझकर उनका अभिनंदन करता हूँ जो वापस आ गए और इस विकल्प से आए कि हमारे आगे की पीढ़ी को ये तत्व ज्ञान मिलना चाहिए, जो आप लोग भी चिंता करते हैं, क्लास वगैरह चलाते हैं। खैर, तो कुंद कुंदाचार्य किसका सत्संग करके आए थे, अरहंत परमात्मा का। तो वहां मुनिराज भी होते होंगे ऊंची ऊंची हाइट वाले हैं, उनको तो एलाचार्य बोला था ना, एलाचार्य, तो बड़े गणधर प्रभु होते होंगे तो उन्होंने गणधर से भी बात की होगी, आचार्यों से बात की होगी। यानी पंडित साहब ने ऐसा लिखा है हिम्मत भाई ने कि वो छायिक ज्ञान और छायिक सुख का समागम करके आए थे तो उसकी याद ताजी ताजी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रवचन सार ग्रंथ लिखा होगा ऐसा अनुमान है। क्योंकि आप देखिए उसमें आज अपन ने सुख अधिकार प्रारंभ किया तो भी छायिक ज्ञान की ही महिमा बताई, तो वहां जयसेनाचार्य देव ने प्रश्न किया कि अभी तो सुख अधिकार प्रारंभ हो गया है, आप केवल ज्ञान के ही गीत क्यों गा रहे हो? तो जयसेनाचार्य ने प्रश्न उठा के जवाब दिया कि ये सुख जो है वह ना ये ज्ञान का अविनाभावी है, ये बिना केवल ज्ञान के अनंत सुख प्रकट नहीं होता है, इसलिए हम ज्ञान के भी चर्चा इसमें करते। तो प्रवचन सार में का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं है, प्रवचन सार का विषय वस्तु अतिंद्री ज्ञान अतिंद्री सुख और उसके अनुसंधान में इंद्री ज्ञान दुख रूप है और इंद्री सुख भी दुख रूप है। इस तरह से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में इंद्री सुख को दुख रूप बताया और इंद्री सुख का कारण जो शुभ परिणाम है वो भी दुख रूप है। फिर गे तत्व प्रज्ञापन केवली की वाणी में जो उत्पाद वे द्रव्यम सत सद्रव्य लक्षणम वगैरह सुन के आए, गे तत्व प्रज्ञापन में उसका वर्णन कर दिया और उन्हें याद आई होगी यार वहां कैसे कैसे मुनिराज थे जो कि श्रेणी चढ़ने की योग्यता रखते थे। हो सकता है उनकी आंखों के सामने ही, ये तो मैं कल्पना करता हूँ, कोई कोई मुनिराज ध्यान में बैठे होंगे, कुंदकुंदाचार्य उनके साथ में बात करते होंगे और वो ध्यान में चले गए और उनके सामने ही उनको केवल ज्ञान हो गया, या ऐसा नहीं हो सकता क्या? ख्याल में आया ना? तो उनने जो मुनियों की जो निर्दोष चर्या चरणानुरूप उसका वर्णन भी उस प्रवचन सार ग्रंथ में किया। तो प्रवचन सार समझ लो उनके सत समागम की यादगार है, उनके विदेह क्षेत्र का जो 8 दिन का प्रवास था ये साइकोलॉजी है। हम भी जब पहली बार सोनगढ़ गए ना तो अपने गांव में आके सोनगढ़ में ऐसा होता है, सोनगढ़ में ऐसा होता है, सोनगढ़ में ऐसा होता है, हर जगह वही वही चर्चा आती है। तो उन्होंने विदेह क्षेत्र की स्मृतियों को छायिक ज्ञान और छायिक सुख के वर्णन में, गे तत्व के वर्णन में, मुनिचर्या के वर्णन में उन्होंने उसको संजो के सुरक्षित रख लिया उसमें। फिर उन्होंने देखा कि यार भरत क्षेत्र में तो वो बात ही नहीं चलती जो दृष्टि के विषय की बात, जो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा की बात, जो एक ज्ञायक भाव की बात, यहाँ तो वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, खत्म हो गई थी ऐसा नहीं है। अंग पूर्व से ज्ञान तो कुंदकुंदाचार्य को ही था, है? सो साती देखी सरितने करुणा भीना हृदय करी मुनि कुंद संजीवनी समय प्रा व्रत तने भाजन भरी। इसका तो अर्थ आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, हम क्या बता रहे हैं। हमने तो पंडित जी ने जो समोसरण स्तुति लिखी ना बड़ी, उसका हिंदी अनुवाद किया है बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले, अभी वो एक बुक में हम लेने वाले हैं। और ये दोनों स्तुति, समय सार स्तुति और गुरुदेव की स्तुति, अद्भुत चीज है, अद्भुत रचनाएं। पंडित जी को हरि गीतिका के माध्यम से तो गुरुदेव प्रशंसा करते थे, इनने हरि गीत बनाया, 5 परमागमों का हरि गीत बनाया। मेरे हृदय में उसके साथ साथ इसकी भी महिमा बहुत है, ये जो 2 स्तुति और समुसरण स्तुति उन्होंने लिखी है। अभी आएगा 12वें गुणस्थान का वर्णन, तब एक छंद पढ़ के मैं सुनाऊंगा उसका, समुसरण स्तुति का 12वां गुणस्थान इसमें आने वाला है अभी। तो कुंदकुंदाचार्य ने देखा कि जो वीर प्रभु से जो गंगा जिनवाणी गंगा बहती चली आई है 500 वर्ष से, अब वो सूखने लगी, यानी लोगों की मेमोरी वीक होती जा रही, ये जितना डेवलपमेंट साइंस का हुआ है सब मेमोरी वीक होती है उसका इलाज है। पहले सुन के ही लोगों को याद हो जाता था, फिर अब बुक मेमोरी कम होने लगी तो लिखने की परंपरा चालू हुई, फिर प्रिंटिंग की परंपरा चालू हुई, और अब तो कुछ भी मेमोरी रखने की दिमाग को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं है। आप तो कैलकुलेटर 100 रुपए का, उसमें आप समझ लो वो हजारों का गुणा भाग गणित कर सकते हैं, है? जरा सी वो होती है चिप, उसमें आप हजारों प्रवचन रख सकते हैं। तभी तो दिमाग पे बोझा डालने की जरूरत ही नहीं, एक अपेक्षा से ये अच्छा भी है। तो आप फ्री हो गए ना, है? याद करने के टेंशन से उपयोग फ्री हो गया ना, उसको अंदर जाने में क्या बाधा है? लेकिन हम उसका उपयोग इसमें नहीं करते, अंदर जाने में नहीं करते, विषय कषाय में करते। तो आचार्य देव ने ये संकल्प किया कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और चैलेंज किया, दिखाऊं तो प्रमाण करना। कदाचित मान लो व्याकरण में इसमें कॉमा फुल स्टॉप में चूक जाऊं, छल ग्रहण नहीं करना भाई, अनुभव से प्रमाण करना। मैं अनुभव से कहूंगा और तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो जगत के जीवों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्रकट होवे, ये शुद्ध आत्मा के आश्रय से होता है, ये बताने के लिए उन्होंने समय सार ग्रंथ की रचना की। समय सार को अति संक्षेप में हम कह सकेंगे उसमें क्या है, तो 3 शब्दों में बोल सकते हैं। समय सार की विषय वस्तु को 3 शब्दों में बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो उसमें जो शुद्ध ने का विषय भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा का वर्णन किया, वो जो 6वीं 7वीं गाथा में। दूसरा, वो भगवान आत्मा कैसे प्राप्त होता है, तो स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानुभूति के द्वारा प्रकट होता है, तो स्वानुभूति का वर्णन किया, स्वानुभूति की प्रेरणा दी। स्वानुभूति अपने तो अपने सोनगढ़ को आजकल वो बोलने लगे ना, स्वानुभूति तीर्थ है, बहुत बहुत बढ़िया शब्द है, किसी अच्छे बुद्धिमान आदमी ने डेवलप किया होगा स्वानुभूति तीर्थ है। अरे असली तीर्थ तो वो ही है, स्वानुभूति से ही भव से पार होते। तो स्वानुभूति की प्रेरणा, स्वानुभूति की विधि, स्वानुभूति की कला, ये सब जो है अपने क्या बोलते हैं, ये समय सार में है, आत्मा और आत्मा की अनुभूति। जिन जीवों को आत्मा की अनुभूति नहीं है वो क्या भूल करते हैं, क्यों अनुभूति नहीं है, वो क्या मानते हैं, उसकी चर्चा भी समय सार में। अज्ञानी कब तक रहता है, अप्रतिबुद्ध क्या मानता है, अज्ञानी क्या मानते हैं, यानी ज्ञानी आत्मा का वर्णन है, आत्मा को जानने वाले ज्ञानियों का वर्णन है, और आत्मा को नहीं जानने वाले अज्ञानियों का वर्णन। इस तरह समय सार जो है एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने वाला ग्रंथ है। एक अपेक्षा देखा जाए तो वो भी बहुजन हिताय है, भव्य जीवों के ऊपर करुणा करके आचार्य देव ने लिखा। 2 हो गए, प्रवचन सार और क्या बोलते हैं समय सार। अपन ने प्रवचन सार में पीठिका में जब शुरुआत की थी तो 5ों ग्रंथों की विषय वस्तु का की चर्चा संक्षेप में इसमें आई। ये तो आप लोग ले जाना, बाद में घर में स्वाध्याय करना, पर्सनल पढ़ने लायक है ये, क्योंकि प्रवचन सार तो है ही, इसमें प्राकृत में भी है, हिंदी में भी है, और फिर उसका सार वगैरह भी है। तो आप स्वाध्याय करोगे तो आपको विषय वस्तु पूरी ख्याल में आ जाएगी। अभी 5वीं काय उन्होंने ये कोई इसी क्रम से लिखे हो ऐसा मैं नहीं कहता, अब जब जो भी लिखा हो, लेकिन प्रवचन 5वीं काय का उद्देश्य जगत के जीवों को समझ लीजिए 6 द्रव्य 7 तत्व मोक्ष मार्ग वगैरह का ज्ञान प्रधान शैली से वर्णन करने का उद्देश्य, वो 5वीं काय की विषय वस्तु है। उसकी चर्चा गुरुदेव श्री ने व्याख्यान किए तो ही समाज में वो ज्यादा जाहिर हुई, अन्यथा उसके बाद में आप यूं समझ लो जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने 5वीं काय का ही संक्षिप्त रूप 58 गाथाओं में द्रव संग्रह बनाया। ख्याल में आया? तो वो द्रव संग्रह इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि वही विषय वस्तु संक्षेप में उसमें आ गई, तो वो फिर वो चीज चलन में थोड़ी कम रही पंचास्ती का है। तो द्रव संग्रह में भी 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 5 अस्थि काय का और मोक्ष मार्ग का, रत्नत्रय का, इसका वर्णन है। तो समय सार, प्रवचन सार, पंचास्ति काय। फिर आचार्य देव के सामने ही मार्ग में दूसरी धारा खड़ी होने लगी थी। ये हुंडा सर्पणी काल में ही ऐसा होता है। आप जानते हैं हुंडा सर्पणी काल क्या कहलाता है? ऐसा है, एक उत्सर्पणी यानी काल चक्र का उत्थान, एक अवसर्पणी यानी डाउनफॉल, एक अप और एक डाउन। जो सर्कल घूमता है ना, तो एक पॉइंट जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर वाला जो है वो नीचे आएगा। ऐसे पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा, जिसको अपन बोलते हैं। तो पहले उत्सर्पणी थी, ख्याल में आया ना, फिर ऋषभ देव इत्यादि हुए वो अवसर्पणी में हुए, वो डाउनफॉल में हुए, अभी डाउन ही चला जाएगा। फिर 84,000 वर्ष बाद फिर अप टाइम चालू होगा। ऐसे असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी निकल जाते हैं, तब एक हुंडाव सर्पणी आता है। पता नहीं उसको हुंडा शब्द क्यों लगाया, मुझे उसका शब्दार्थ नहीं पता, लेकिन जैसा कि उसमें फोर्स आता है ना, बल है, हुंडाव सर्पणी यानी कुछ विशिष्ट बातें उसमें होती, जिसको अछेरा कहते ना श्वेतांबर में। तो पंडित जी ने, टोडर मल जी ने वो लेख किया है, उनके तो अलग टाइप के हैं, अपने यहाँ तो अपने यहाँ भी अछेरा है कि वो घटनाएं और कभी नहीं होती। तीर्थंकर की पुत्री होना, समझ में आया? तो ऋषभ देव की पुत्री हुई ब्राह्मी और सुंदरी, ये हुंडा सर्पिणी काल का प्रभाव है। अछेरा समझ क्यों हुआ, इसको छेड़ो मत, वो काल उपचार से काल दोष कहने में आता। चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, भरत चक्रवर्ती को बाहुबली ने चैलेंज कर दिया कि हम नहीं मानते तुमको, जो लगे सो कर लो, भले युद्ध कर लो। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ख्याल में अच्छी घटना नहीं थी, ये कभी नहीं घटती, ये हुंडा सर्पिणी काल में घटी। एक तीसरा, भगवान की वाणी केवल ज्ञान हो जाए वो खिरे नहीं, समझ में आया ना? तो 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, ये भी हुंडा सर्पिणी काल का ही प्रभाव है। ऐसी कई घटनाएं हुई है। हाँ, ये भी है, ऋषभ देव को 6 महीने तक अंतराय रहा, होना नहीं चाहिए कायदे से। हाँ, अभी तीर्थंकर अलग अलग जगह से मोक्ष गए, अलग अलग जगह जन्मे, ख्याल में। और एक ही व्यक्ति 3 पदवी के धारक हुए, जो होने तो चाहिए अलग अलग। तो ये भी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, ऐसी कई बातें हैं। तो आचार्य देव के सामने ही जो सवस्त्र मुनि दशा वाला जो पंथ प्रारंभ हुआ, इससे उन्हें बहुत अंदर में पीड़ा हुई, अरे ये क्या हो रहा है। कभी कभी आप देखो गुरुदेव इतनी करुणा से बताते हैं, आहा, भगवान सर्वज्ञ रहे नहीं, धर्म पिता चले गए। जैसे धर्म पिता के जाने के बाद पुत्रों में झगड़े चालू हो जाते हैं और जमीन जायदाद के झगड़े होने लगते हैं, कषाय बढ़ जाती है, ऐसे आज अगर धर्म पिता होते तो ये मार्ग सच्चा गए, ये मार्ग सच्चा गए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, कहाँ इसमें विवाद होता। भगवान सब सॉल्व कर देते ना, लेकिन अब भगवान रहे नहीं और समझ लो पुण्यहीन हो गया, तो ये मार्ग में ये विकृति आ गई। इसकी भी गुरुदेव को बहुत बहुत पीड़ा थी कि देखो श्रावक वस्त्र रखते हैं तो वो तो उसके उसको राग है, उसने कोई वस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा नहीं की है, उसने कोई परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा नहीं की है, तो वो तो उसकी भूमिका के अनुसार है, तो वो सामान्य दोष है। सामान्य परिग्रह तो पाप है ही, समझ में आया? लेकिन परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा करे और फिर परिग्रह रखे तो भी माने कि मैं साधु हूं, मैं मुनि हूं, ये बहुत बड़ा संकट मूल मार्ग के सामने आ गया था, ख्याल में आया, तो उसके कारण उन्होंने अष्टपहाड़ ग्रंथ की रचना की। ये मुझे कहना है, अष्टपहाड़ ग्रंथ जो बनाया वो उस प्रयोजन से बनाया जिसमें उन्होंने सब मुनि दशा का वर्णन पूरा पूरा उसमें आया। अभी अपन बढ़िया सोचें, चार ग्रंथ हो गए। अब आचार्य देव को लिखने का समझ तो एक तरह से विकल्प तो रहता ही है कि यार कुछ लिखें तो उपयोग उसमें भी सूक्ष्मता में जाता है। देखो, पढ़ने से ज्यादा जिम्मेदारी बोलने वाले की होती, क्योंकि वो बोलता है तो उसमें शार्प माइंड होता है, उपयोग एकाग्र होना चाहिए, गलत सलत नहीं निकल जाए। और बोलने से ज्यादा जिम्मेदारी लिखने वाले की होती। आजकल तो बोलना भी वैसे ही हो गया, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो वो भी चीज वायरल हो जाती है, तो रिस्पांसिबिलिटी तो दोनों में है। तो आचार्य ने अब निज भावना के निमित्त से, ये अब मैं अपने आनंद के लिए मैं ये ग्रंथ की रचना करता हूँ। और शुरुआत कहाँ से की? जीव अधिकार, अजीव अधिकार, परम भक्ति अधिकार, परम समाधि अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, यानी उनकी भूमिका में जो मोक्ष मार्ग चलता है उसका निश्चय पक्ष भी और व्यवहार पक्ष भी दोनों को रखा। एक पॉइंट, एक दो पॉइंट, मैंने पांच छह पॉइंट इसमें लगाए हैं। अभी मुझे वो बारहवें गुण स्थान वाला खास कहना है। ये 224 पेज निकालिए सबसे नीचे। देखो, उसके पहले थोड़ा 222 निकालो, उसमें भी एक खास बात है। सबसे ऊपर 222 पेज पर रत्नत्रय भक्ति ने कही छे, पण एनी साथे जे निश्चय छे एने निर्वाण भक्ति रत्नत्रय भक्ति ने कही छे। यानी व्यवहार भक्ति वो सिद्ध भक्ति है, सिद्ध भगवान की भक्ति वो व्यवहार से निर्वाण भक्ति है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन वो निश्चय से रत्नत्रय भक्ति, वो निर्वाण भक्ति। पण एनी साथे व्यवहार कहियो खरो, मुझे इस पे भजन देना है। क्या लिखा? व्यवहार कहियो खरो पण एनी साथे निश्चय छे। हा हा, निश्चय स्व आश्रय बिनानी बात क्या है, एक डगलू आगल नहीं चाले। आत्मा दृष्टि में नहीं रहे, आत्मा का अवलंबन की बात ख्याल में नहीं रहे तो एक कदम भी नहीं चल सकता है वो। फिर तो उसका भक्ति दया दान व्रत शील संयम, आपको मालूम अन्य ग्रंथों में तो बहुत कठोर उपमा दी है, कहने में संकोच होता है, मुर्दे का श्रृंगार सुना है। बहुत से लोग शव निकालते हैं ना, तो शव में भी माला चढ़ा देते हैं, गुलाल छिड़कते हैं। अरे हमने तो एक समाज में महाराष्ट्र में देखा था, उसके मुंह में पान रख देते कि बेटा यहाँ खा लो, वहां पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अभी जड़ है, जड़ समझ में आया, जड़ शरीर जिसमें चेतना नहीं है, जीव चला गया, घंटे भर से रो रहे है, पोस्टमार्टम होके आया है, ऐसा देवलाली में प्रसंग बना था, चाल में आया ना, तो भी उसके रिश्तेदारों ने बढ़िया पान ला करके उसके मुंह में रख दी। कैसी मूढ़ता जीवों की। तो फूल माला चला, जाने वाले का सम्मान करना, तो फूल माला वगैरह से सम्मान करते हैं। ध्यान रखना, आत्म ज्ञान के बिना, आत्मानुभूति के बिना जो कुछ अपने जीवन में धर्म कार्य है वो मुर्दे का श्रृंगार है वास्तव में देखा जाए। बाकी जो समझ लो अशुभ है, खाना है, पीना है, पैसा कमाना है, उसकी तो बात क्या करना, वो तो श्रृंगार ही नहीं है, वो तो कलंक है। समझ में आया? लेकिन ये इससे शोभा बढ़ती है, पर चेतना जीव होवे, जीवंत व्यक्ति होवे और उसको मुकुट लगावे, उसको हार पहनावे तो शोभा बढ़े, इंद्र बना देते ना है। लेकिन अब जीव ही नहीं है तो अकेले सबको इंद्र बनाने से क्या फायदा, ऐसा है भैया। तो इसमें लिखा, आम कषाय ने मंद करिए, फलाणु करिए, शास्त्र ना जानपणा करिए, एनाथी अंदर जवासे, એ વસ્તુ તો નિરપેક્ષ છે, યાને કશાય કી મંદતા મેં શાસ્ત્ર કે જાન પડને મેં ઇસમે ભી કોઈ ઇસસે માર્ગ નહીં મિલતા. શાસ્ત્ર જ્ઞાન તો આત્મજ્ઞાન મેં નિમિત્ત હોતા હૈ, જો કરે તો, નહીં તો કશાય કી તીવ્રતા હોવે તો ઉસમે ભી મદ ચડ જાવે, શાસ્ત્ર જ્ઞાન કા મદ ચડ જાવે. મેં ઇસલિયે ઇસકો યાદ કિયા કે યે જીવ કહાં અટકતા હૈ. વચનાવ્રત મેં આતા હૈ, અટકવાના સ્થાન ઘણા છે, ક્યાં તો જીવ મંદ કસાયમાં અટકી જાય છે, ક્યાં શાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં અટકી જાય છે, ઓર ભી બહુ સે સ્થાન હૈ અટકને કે. તો ભૈયા અપને કો સાવધાની રખને કે લીએ યે સબ બાત કહેતે. ફિર 224 પેજ પે, વ્યવહાર તો છઠા ગુણ સ્થાન સુધી જ હોય ના, યે પ્રકરણ અલગ સે થોડા સમજને લાયક હૈ. और मैं पूछ के पता करूंगा, विदिशा में हमने पूरे 18 दिन, उसमें 2 दिन डिस्टर्ब हो गया था, तो नए रहस्य पुस्तक में जो निश्चय व्यवहार वाला टॉपिक है उसको पढ़ाया था. स्पेशल समझ लो उसकी प्रौढ़ कक्षा थी, उन्होंने उसको वेबसाइट पर भी डाला है. अब वो सुरक्षित होगा कि नहीं, क्या होगा मुझे पता नहीं, ये तो उसकी CD भी मंगा सकते हैं. तो हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये है क्या चीज. किसी वस्तु का नाम, किसी द्रव्य का नाम, किसी गुण का नाम, किसी पर्याय का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है. ये समझने की बात है. ये रात में चलाएंगे थोड़ा डिटेल में. घी का घड़ा, ये व्यवहार का कथन हो गया. तो व्यवहार किस में, घी में के घड़े में? घड़े को व्यवहार कहना कि घी को कहना, किसको कहना? अरे घी घी है, घड़ा घड़ा है, घड़ा भी अपने द्रव्यगुण पर्याय में मौजूद है, सत है, समझ में आया? और घी अपने द्रव्यगुण पर्याय में मौजूद है. अब एक को निश्चय कहना और एक को व्यवहार कहना, टोडरमल जी ने साफ निषेध किया. तो फिर व्यवहार कहाँ आया? हमने अपने ज्ञान में घड़े की पहचान घी से की. कौन सा घड़ा उठा के लाना है जिसमें घी रखा है, वो वाला घड़ा. तो हमारे ज्ञान में व्यवहार नहीं खड़ा हुआ, समझ में आया? अथवा रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, घी की पहचान घड़े से की, समझ में आया? मान लो एक स्टील के डब्बे में भी वो तुरंत का निकाला हुआ ताजा, कोई समत प्रकाश जी जैसे लोग आने वाले हैं है? तो उनके लिए ऐसा ताजा तुरंत का निकाला हुआ रखा है, और एक बड़े घड़े में समझ लो बाकी फैमिली के लिए जो डेली यूज होता है वो रखा है. उनका घी लेके आना, तो कौन सा? वो घड़े का घी लेके आना, समझ में आया? अरे तब हम तो घड़े के घी की बात कर, लोग तो पंडित जी की चटनी बना देते हैं. पंडित जी बस 5 मिनट, आपकी चटनी बाकी रह गई है बस. तो घी की पहचान गाय के दूध का है कि भैंस के दूध का है, उपादान से नहीं की, संयोग से की. तो घड़े का घी, तो वो हमारे ज्ञान ने ये काम किया. तो खरे खर निश्चय व्यवहार तो ज्ञान में होता है. स्वास्त्र तो निश्चय, परास्त्र तो व्यवहार है. ख्याल में आया? तो इसमें गुरुदेव ने पूर्व भूमिका में जो सुवराग होता है उसको भी अशुद्ध नये लेकर के, और अशुद्ध नये भी व्यवहार है. तो 12वें गुण स्थान तक अशुद्धता कही, ये इसमें 225 पेज पे पूरा जो व्याख्यान है वो इसी पॉइंट का है. देखो ये 225 पेज नीचे से जो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है उसकी 4 लेने मुझे पढ़नी. जेठलो अंदर स्वास्त्र थयो, चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा एनु अवलंबन थयू, એટલો તો મોક્ષ માર્ગ શરૂ થઈ ગયો છે. જો અશુદ્ધતા હૈ વો મોક્ષ માર્ગ નહીં હૈ, ઉસકે સાથ મે જો સ્વરૂપ કા અવલંબન હૈ વો મોક્ષ માર્ગ હૈ. અશુદ્ધ ને અને વ્યવહારની ભૂમિકા માં પણ, એ વ્યવહારની ભૂમિકા એટલે અભી રાગ અંશ હૈ, તો ઉસ રાગ કે કારણ પંચ મહાવ્રત ઇત્યાદિ કા રાગ હૈ, ઉસકે સાથ મે વ્યવહાર નય થી નહીં, પણ વ્યવહાર નયની ભૂમિકામાં સ્વનો આશ્રય જે થયો તે મોક્ષ માર્ગ શરૂ થઈ ગયો છે. ફિર શિષ્યને પૂછા, શુદ્ધ ને અને અશુદ્ધ ને બંને સાથે છે? એ જ્ઞાન મેં તો સબ નય રહેતે હૈ, પ્રમાણ જ્ઞાન મેં, લેકિન ભૂમિકા મેં દોનો નયો કા વિષય સાથ મેં રહેતા. કલ મેં આપકો બતાયા થા, જિનાગમ માં નિશ્ચય અને વ્યવહાર રૂપ વર્ણન છે. કલ રાત કો આયા થા, મેં પૂછા થા કોનું કિસકા વર્ણન હૈ, તો દો બાતે આઈ થી, એક તો આત્મા કા વર્ણન હૈ નિશ્ચય ઓર વ્યવહાર ને સે, ઓર મોક્ષ માર્ગ કા વર્ણન. યહાં મોક્ષ માર્ગ કી બાત હૈ. वो राग वो व्यवहार नहीं है, शुभ भाव वो व्यवहार नहीं है. शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहने का जो उपचार है उसको व्यवहार कहते हैं. ख्याल में आया? एक चीज को दूसरे चीज से समझाना. तो शुभ राग तो राग है, वो तो बंध का कारण है, फिर भी उसको मोक्ष का मार्ग कहना. वो भी गुरुदेव ने बार बार याद दिलाया ज्ञानी के लिए. अज्ञानी के शुभ राग को तो खरेखर मोक्ष मार्ग व्यवहार से भी नहीं कहते. परंपरा का भी बहुत अर्थ किया. देखो, बारहवें गुण स्थान में वीतरागता हो गई, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो भी ज्ञानावरण का उदय है. ख्याल में आए ना? अभी क्षयोपशम भाव है ज्ञान में, इसलिए अशुद्ध नहीं कहते हैं, व्यवहार कहते हैं. थोड़ी सूक्ष्म बात है, ये तो स्वाध्याय का विषय है मेन. बाकी तो जो प्रेरणा की बात है वो सब आई है. अभी जैसा कि आप लोगों का आग्रह रहता है वो है, हे प्रभु, बहुत अच्छी भक्ति है, न जाने कब क्या सोच करके लिखी गई होगी, और इसमें भी वीतरागता, सर्वज्ञता और केवल ज्ञान का वर्णन और दिव्य ध्वनि में क्या आया, दृष्टि का विषय इत्यादि इत्यादि बातों की चर्चा है. आप सब इसका आनंद लेंगे. भाषा सरल है. हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, भावना अपने का फल हम पा गए, हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए. वीतरागी हो तुम्हें सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो तुम्हें सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम्हें मर्मज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम्हें मर्मज्ञ हो, मुक्ति का मार्ग तुम्हें से पा गए, मुक्ति का मार्ग तुम्हें से पा गए, हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए. विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, किंतु प्रभु वर लीन है निज ध्यान में, किंतु प्रभु वर लीन है निज ध्यान में, ध्यान में निज ज्ञान को हम पा गए, ध्यान में निज ज्ञान को हम पा गए, हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु, चरणों में तेरे आ गए. तुमने कहा है जगत के सब आत्मा, तुमने कहा है
जगत के सब आत्मा
द्रव्य दृष्टि से सदा परमात्मा
द्रव्य दृष्टि से सदा परमात्मा
आज निज परमात्मा पद पा गए
आज निज परमात्मा पद पा गए
हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए
हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए
भावना अपनी का फल हम पा गए
भावना अपनी का फल हम पा गए
हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए
हे प्रभु चरणों में तेरे आ